أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد پیارے دوستو السلام علیکم ہمارے آج کے کاریکرم کا شیرشک تشہد اور سلام ہے یعنی ہم ان دونوں چیزوں کے بارے میں اپنے پروگرام میں آج بات چیت کریں گے اور مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ان دونوں شیرشک کے بارے میں بات چیت کو آرمبھ کریں ہم اپنی پچھلی بات چیت کو جو سجدے سے سمبندھت تھی اس کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ مسئلے آپ کے سامنے بیان کرنا رہ گئے تھے ان کو بیان کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی بات چیت کو تشہد اور سلام کے سمبندھ میں آگے بڑھائیں گے سجدے کے سمبندھ میں انتم بات جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی ویکتی کسی کارنوش سامان روپ سے سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اس کا دایتو کیا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے فقہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سامان روپ سے سجدہ نہ کر سکتا ہو جھک نہ سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ جتنی ماترا بھر وہ جھک سکتا ہے وہ جھکے اس کے علاوہ اپنی سجدگاہ کو یا اس چیز کو جس کے اوپر سجدہ کرنا چاہتا ہے وہ کسی اونچی چیز پہ رکھیں جیسے ہم نے مثال دی تکیہ یا کوئی اور اونچی چیز رکھے اور اس کے اوپر سجدہ کرے اور اپنے شریر کے دوسرے انگوں کو جو سجدے میں رکھنا انیوار ہیں ان کو اسی بھاتی رکھے جیسے کہ پچھلے مسائل میں بیان کیا گیا تھا تو اس کے بعد جو بات چیت آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان پورن روپ سے جھک نہیں سکتا ہے دوسری بات یہ کہ انسان اصلاً جھک ہی نہیں سکتا ہے یعنی اس کی پیٹھ اس پرکار سے ہے کہ وہ جھک نہیں سکتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا تو اس کے لیے ہمارے فقہا یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ویکتی کسی کارنوش جھک نہیں سکتا ہے تو اس کو سجدہ کرنے کے لیے چاہیے کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد سر کے اشارے سجدہ کرے یعنی اگر یوں ہے تو یوں اپنے سر سے دھیرے سے سر جھکا کے اشارے سے سجدہ کرے لیکن یہاں پر احتیاط واجب یہ ہے کہ جس سمے اس سر جھکا کے سجدہ کر رہا ہے تو اپنی اس سجدے گاہ کو یا اس چیز کو جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے اس کو ہاتھ سے اٹھا کے یا کسی اور چیز کی مادھیم سے اپنی پیشانی سے لگائے اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا اور یہ احتیاط واجب ہے تو یہ اس کے لیے مسائل تھے جو سامان روپ سے سجدہ نہیں کر سکتا ہے یہاں پر اگر ہم چاہیں تو اپنے سجدے کے بھاگ کو اور سجدے کے ادھیائے کو یہاں پر ہم سماپت کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں بھی یہ ریت رکھی تھی کہ انت میں ہم کچھ مستحب چیزوں کے بارے میں بھی بات چیت کرتے تھے اس لیے ہم یہاں پر بھی سجدے کے بارے میں بھی کچھ مستحب چیزوں کا آپ کو بیان کریں گے اس کے بعد اپنی بات چیت کو آگے بڑھا دیں گے سجدے میں کچھ استھان ایسے جہاں پر اللہ اکبر یا تکبیر کہنا مستحب ہے وہ کچھ استھان کون کون سے ہیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جیسے کہ انسان جب سجدے میں جانا چاہتا ہے تو سجدے میں جانے سے پہلے جب رکوع سے اٹھتا ہے تو رکوع سے اٹھنے کے بعد اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ تکبیر کہے اس کے بعد سجدے میں جائے اور اس کے بعد جب سجدے سے اٹھتا ہے تب تکبیر کہے جیسے ہی یعنی سجدے میں گیا جیسے ہی سجدے سے اٹھتا ہے تکبیر کہے اس کے بعد اگر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہے تو وہ کہے اس کے بعد پھر جب سجدے میں جانے لگتا ہے تو یہ تکبیر کہے یہ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو تکبیر کے سمبندھ میں مستحب تھیں اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا سجدوں کے بیچ میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا مستحب ہے اس کے علاوہ سجدوں میں صلوات کا پڑھنا مستحب ہے یہ وہ چیزیں تھیں جو سجدے میں مستحب ہیں اس کے علاوہ بہت سی مستحبات ہو سکتے ہیں جیسے سجدے میں نگاہ کہاں پر ہو وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں جن کو ہم یہاں پر بیان نہیں کریں گے تو یہ سجدے کے سمبندھ وہ چیزیں تھیں جو نماز کے اندر سجدے ہوتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ سجدے کبھی کی نماز کے اترکت بھی کچھ استھان ایسے ہوتے ہیں جب سجدہ واجب ہو جاتا ہے جیسے کہ کیا اگر کسی سے پوچھا ایک مسلمان کا بچہ ہی بتا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کچھ سوریں ایسے ہیں کہ اگر ان میں اس خاص آیتوں کو ان وشیش آیتوں کو پڑھا جائے تو انسان کے اوپر ایک مسلمان کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم یعنی سجدے کے انترگت جسے کہا جائے بات چیت کریں گے ایک دو مسئلے آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے تو ہم سبھی جانتے ہیں قرآن میں چار سورے ایسے ہیں جس میں آیت سجدہ ہے यानी अगर उसको पढ़ा जाए या उसको सुना जाए तो उसको एक मुसलमान के ऊपर वाजिब होता है कि फ़ौरन सजदा करे। हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि वो सूरह कौन कौन से, लेकिन आज फिर बता रहे हैं। वो सूरह जिनको जिनको पढ़ने पर यानी जिनके अंदर आयत सजदा है वो चार हैं, फुसलत, सूरह सजदा, सूरह नज्म और सूरह अलक। ये कुरान के वो चार सूरे हैं जिसमें आयत सजदा है और इसमें वाजिब सजदा है। अगर इंसान इन आयतों को पढ़ता है या सुनता है तो उसके ऊपर ये वाजिब है कि फ़ौरन सजदा करे। और अगर आदमी सुन लेता है या पढ़ता है और सजदा करना भूल जाता है तो उसके ऊपर वाजिब है जिस समय भी इंसान को याद आए उस समय वो सजदा करे। और यहाँ पर एक मसला ये पेश आता है, खुद कभी कभी होता है खुद पढ़ता नहीं है, टेप रिकॉर्ड में कैसेट लगी हुई है या कंप्यूटर पे सीडी लगी हुई है, कोई प्रोग्राम है उसमें हम सुन रहे हैं और ये आयत सजदा पढ़ी जाती है, तो उसके बारे में क्या आदेश है? तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर टेप रिकॉर्ड, सीडी या कंप्यूटर के प्रोग्राम या MP3 प्लेयर या इस प्रकार की चीज़ों से अगर वो सुन रहा है तो उसके ऊपर सजदा करना वाजिब नहीं है। लेकिन यहाँ पर आगे जो बात आती है वो ये कि अगर लाउड स्पीकर या टीवी से जो डायरेक्ट रिले हो रही है इस तरह के माध्यमों से अगर इंसान सुन रहा है तो उस वक्त क्या करे? तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि आयतुल्लाह सिस्तानी का भी ये फतवा है कि अगर वो जो सुना जा रहा है रेडियो से, जो सुना जा रहा है, जो टीवी पर देखा जा रहा है, अगर डायरेक्ट रिले हो रहा है, डायरेक्ट कास्ट किया जा रहा है तो इंसान के ऊपर वाजिब है कि सजदा करे, यानी अगर डायरेक्ट आ रहा है। और हमारे आयतुल्लाह खामनेई ये कहते हैं कि यहाँ पर वो डायरेक्ट होने की कैद नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं अगर रेडियो या टीवी इन तरफ चीज़ों से सुना जा रहा है तो उसके ऊपर वाजिब है कि सजदा करे और उसके ऊपर सजदा करना वाजिब होगा। तो ये हो गया वो सजदा जो कुरान की आयतों को सुनने से वाजिब होता है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस सजदे को कैसे किया जाए, क्या इसके लिए भी कोई विशेष शर्तें हैं? तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं जिस समय कुरान की आयतों से वाजिब हुआ सजदा किया जा रहा है तो उस समय एक चीज़ का ध्यान रखना आवश्यक है, वो ये है कि जिस चीज़ पर इंसान सजदा कर रहा है वो चीज़ खाई और पहनी ना जाती हो। जैसे कि नमाज से जो सजदा वाजिब होता था उसके बारे में भी हमने यही बयान किया था कि नमाज में जिस समय सजदा करना चाहता है वो ऐसी चीज़ पर करे जो खाई और पहनी ना जाती हो। लेकिन जो कुरान से वाजिब सजदा होता है उसमें केवल इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि खाई और पहनी ना जाती हो उस पर सजदा किया जाए, लेकिन शरीर के दूसरे अंगों का होना या सही स्थिति में होना या इंसान के शरीर का क़िबले की तरफ होना ये सब चीज़ें अनिवार्य नहीं हैं, बल्कि वो किसी भी तरफ रुख करके सजदा कर लेता है वही काफ़ी होगा। और ये जो सजदा जो कुरान की आयतों से वाजिब होता है उसमें जिक्र पढ़ना अनिवार्य नहीं है, बल्कि कोई भी जिक्र पढ़ सकता है। लेकिन हमारी तौज़ील मसाल और दुआओं की किताबों में आया है कि जिस समय इंसान कुरान की आयत से वाजिब हुए सजदे को पढ़ रहा है उस समय ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईमानं व तस्दीका, ला इलाहा इल्लल्लाहु इबादी, ला इलाहा इल्लल्लाहु उबूदियतं व रिक्का, सजद तो लगा या रब्बे तअब्बदं व रिक्का, ला मुस्तनकिफं व ला मुस्तकबरा, बल अना अब्दुन जलीलुन खाइफुन मुस्तजीर। इस दुआ को इंसान को पढ़ना चाहिए जब वो आयत से वाजिब हुए सजदे को कर रहा है। तो ये वो चीज़ें थीं जो सजदे से मुतालिक थीं, सजदे से संबंधित थी, जिनको हमने आपके सामने बयान किया। हम अपने इस चैप्टर को यानी सजदे से संबंधित भाग को, अध्याय को यहीं पर समाप्त करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सजदे के बाद नमाज के संबंध में, नमाज के वाजिबात के संबंध में जिस चीज़ को बयान किया जाता है वो है उसके बाद जो चीज़ आती है वो तशहुद, कि नमाज में एक तशहुद पढ़ा बल्कि दो तशहुद पढ़े जाने अनिवार्य हैं। पहला तशहुद उस समय होता है जब इंसान 3 रकती या 4 रकती नमाज की दूसरी रकत में होता है, और दूसरा तशहुद उस समय होता है जब इंसान नमाज के अंत में होता है। तो ये दो तशहुद हैं जो नमाज में पढ़े जाएंगे। अगर रकत यानी नमाज 3 या 4 रकती है, अगर सुबह की नमाज है यानी 2 रकती नमाज है, तो एक ही तशहुद पढ़ा जाएगा। और जिस समय इंसान तशहुद पढ़ रहा है, जैसा कि हम बार बार इस बात को कहते आए हैं, वो ये है कि इंसान का शरीर ठहरा हुआ हो अपने स्थान पर, यानी जब सजदे से उठे दूसरे सजदे से और तशहुद पढ़ना चाहता है तो अपना शरीर ठहर चुका हो, उस समय अपने तशहुद के जिक्र को शुरू करे। यानी क्या पढ़े? यानी ये पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह, वाशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये वो जिक्र है जो तशहुद में पढ़ना चाहिए इंसान को। उसके बाद अगर इंसान भूल जाए तशहुद पढ़ना तो क्या करे? तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान तशहुद पढ़ना भूल जाता है और उसको रुकू से पहले तशहुद याद आ जाता है, यानी भूल गया, उसको तशहुद भूल गया, नमाज के लिए खड़ा हो गया, यानी अगली रकात के लिए खड़ा हो गया, और इससे पहले कि रुकू में पहुँचे उसको याद आ गया कि हमने तशहुद नहीं पढ़ा था, तो उसको चाहिए कि जैसे ही उसको याद आता है रुकू में पहुँचने से पहले, जैसे ही याद आता है वैसे ही बैठ जाए, बैठने के बाद वो तशहुद को पढ़े और उसके बाद जो नमाज़ बची हुई यानी खड़ा हो, फिर उसकी अपनी पूरी नमाज़ को उसी क्रम अनुसार अपनी नमाज को आगे बढ़ाए और नमाज़ को तमाम कर दे और उसकी नमाज़ सही होगी। लेकिन अगर तशहुद में पहुँचने यानी रुकू में पहुँचने के बाद इंसान को याद आता है, यानी रुकू में पहुँच गया था, रुकू समाप्त कर चुका था, तो ऐसी सूरत में अगर उसको याद आए तो क्या करेगा? तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर रुकू में पहुँचने के बाद या रुकू समाप्त करने के बाद इंसान को याद आता है कि उसने तशहुद नहीं पढ़ा था, तो उसको चाहिए कि अपनी नमाज़ को आगे बढ़ाता चला जाए और नमाज़ को समाप्त कर दे, और नमाज़ समाप्त करने के बाद तशहुद की क़ज़ा करे, और उसके ऊपर एहतियात वाजिब यह है कि दो सजदे सहो करे। तो ये उस समय है जब रुकू में पहुँचने के बाद या रुकू करने के बाद इंसान को याद आता है। तो ये रुकू से संबंधित कुछ संक्षिप्त मसले थे जो हमने आपके सामने बयान किए, ये तशहुद से संबंधित कुछ संक्षिप्त मसले थे जो हमने आपके सामने बयान किए। तशहुद के बाद जिस चीज़ की बारी आती है, जिस चीज़ का नंबर आता है नमाज में, वो है सलाम। कि इंसान जब नमाज़ पढ़ने के लिए अपनी नमाज आरंभ करता है तो उसकी नमाज उस समय तक समाप्त नहीं होती है जब तक कि वो सलाम न पढ़े। तो सलाम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, इसके बारे में कुछ मसले हैं जो हम आपके सामने यहाँ पर बयान कर रहे हैं। हर नमाजी को, कोई भी जो नमाज़ पढ़ रहा है, चाहे वो मुस्तहब नमाज हो चाहे वाजिब नमाज हो, कोई भी नमाज़ हो, जब नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके लिए अनिवार्य ये है कि हर नमाज की अंत में तशहुद के बाद सलाम पढ़े। उसके बाद अब नंबर ये आता है, नौबत इस बात की आती है कि सलाम में क्या पढ़े और कितना पढ़े। तो इसके बारे में हमारे फुकहा अलग अलग बातें बयान करते हैं, उनके बारे में, उनके नज़रियात में यहाँ पर मतभेद है। यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, इनमें से अगर कोई एक भी जिक्र पढ़ लेता है तो यही सलाम के लिए काफ़ी होगा। जैसे ही ये पढ़ लिया वैसे ही उसकी नमाज़ समाप्त हो जाती है। तो ये वो चीज़ थी जो वाजिब थी, यानी कम से कम इस मात्रा में नमाज समाप्त करने के लिए पढ़ना अनिवार्य। लेकिन हमारे सारे फुकहा ये कहते हैं कि मुस्तहब ये है कि जैसे हम आम हालत में सलाम पढ़ते हैं उस प्रकार पढ़ें, यानी क्या, यानी इस तरह पढ़ें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ये मुस्तहब है, इंसान को चाहिए कि कम यानी इन तीनों जिक्रों को अपने सलाम में पढ़े और उसके बाद अपनी नमाज को समाप्त करे। ये वो कुछ मसले थे जो सलाम से संबंधित थे जिनको हमने आपके सामने बयान किया। तो हम अगर आपके सामने आज के प्रोग्राम, आज के कार्यक्रम का सारांश बयान करना चाहें तो इस प्रकार हुआ। हमने सबसे पहले सजदे से संबंधित दो मसलों के बारे में बातचीत की, उसके बाद हमने तशहुद के बारे में बात की, और सजदे ही में अंतर्गत हमारी ये बात थी कि अगर आयत से सजदा वाजिब होता है तो उसके अहकाम क्या हैं, हमने आपके सामने बयान किया। उसके बाद हमने तशहुद के बारे में आपके सामने कुछ मसले बयान किए, और उसके बाद सलाम से संबंधित आपके सामने कुछ मसले बयान किए। वाजिबात नमाज से संबंधित कुछ और मसले हैं, शायद एक दो मसले और बचते हैं, या जिसे कहा जाए एक दो शीर्षक और बचते हैं, जिसको हम अपने अगले किसी प्रोग्राम में आपके सामने बयान करेंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।